नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब आप सड़क पर चलते हैं तो कभी ध्यान दिया ही होगा कि सबसे ज्यादा क्या नजर आता है। याद कीजिए, क्या आपको यह दिखता है कि किस ब्रांड की कार सबसे अधिक है या आपकी जैसी कार दूसरों ने भी खरीदी है। ठीक से देखेंगे तो इससे भी अधिक एक नारा दिखता है जो अगल बगल से गुजरती हर दूसरी तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप इस नारे को लिखा देखे बगैर भारत में सड़क से कोई यात्रा पूरी नहीं कर सकते। क्या ये नारे सरकार की तरफ से लिखवाए गए हैं या इन गाड़ी वालों ने अपनी तरफ से लिखवाए हैं या फिर पेंटर ही हर गाड़ी के पीछे लिखते जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे पास इन तीनों प्रश्नों के ठोस जवाब नहीं है। इतना जरूर लगता है कि भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखने वाला स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही होगा। सवाल आपसे है कि इस स्लोगन को देखते हुए क्या आप बेटियों के बारे में सोचते हैं? क्या खुद को खतरे के रूप में देखते हैं जिनसे बेटियों को बचाना है, या आप देखकर भी अनदेखा करते हैं? शायद आप कुछ नहीं सोचते होंगे। मुझे आपकी यही बात सबसे अधिक पसंद है कि आप हर जगह लिखा देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कुछ नहीं सोचते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि कुछ सूचनाओं के अति प्रचार से समाज पर खास असर नहीं पड़ता है। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राज्य सरकारों को जो फंड दिए गए उसका 78.91% विज्ञापन पर ही खर्च हो गया। 5 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 848 करोड़ का बजट दिया गया, इसमें से केवल 156 करोड़ योजना पर खर्च हुआ है, बाकी सारा पैसा विज्ञापन पर। कायदे से इसे विज्ञापन योजना घोषित कर देनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र इसलिए किया ताकि हम समझ सकें कि इस योजना का फायदा क्या हुआ, क्योंकि यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। समीर ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि महंत बजरंग मुनि के सत्ता संबंध किस तरह के हैं। महंत की राजनीतिक ठाठ भी कम नहीं दिखती है। बजरंग मुनि की इन तस्वीरों को देखकर आप भरोसा कर सकते हैं कि इंसाफ होगा, वो इंसाफ जो कभी होता नहीं मगर होने वाला होता है। खासतौर से इस तस्वीर में सीतापुर सदर विधायक और यूपी सरकार में मंत्री राकेश राठौर नफरती भाषण देने वाले बजरंग मुनि को कंधा देते हैं, जिन्हें राज्य मंत्री कंधा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? फिर यही महंत माइक हाथ में लेकर एक समुदाय की बेटियों को ललकारते हुए सुने जा सकते हैं कि उनका बलात्कार करेंगे। महंत बजरंग मुनि दास की सारी बातें ऐसी हैं कि हमें सुनाने की इच्छा तक नहीं हो रही। वैसे ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल पर सुना तो पूरा सुना भी नहीं गया। यह व्यक्ति जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसे सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जो ऐसे लोगों को चुपचाप फैमिली और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। आप खुद को बेहतर समझते हैं। अगर इन बातों से आपत्ति नहीं है तो अपने घर के बच्चों को सुना सकते हैं। कम से कम पता चले कि जिन चीजों को आप अपनी चुप्पी से सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों आपके और आपके बच्चों के लिए जरूरी है। कानून के कारण हम नारों की आवाज नहीं सुना रहे, लेकिन एक समुदाय की बहु बेटियों के बलात्कार करने के ऐलान के वक्त इन युवाओं की प्रतिक्रिया आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कितना गौरव है इनके चेहरे पर, हंसी। बलात्कार के पक्ष में खड़े समाज के इस सैंपल से भारत के युवाओं का भविष्य स्वर्णिम दिख रहा है। राम के नारे से मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नवरात्रि के दिनों में जब घरों में कन्या पूजन की तैयारियां हो रही हैं, उस समय यह महंत एक मस्जिद के सामने आकर बहु बेटियों के बलात्कार की बात कर रहा है। ईश्वर के नाम पर छोटी छोटी गलतियों से डर जाने वाले लोग महंत की इन बातों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब वे महंगाई को सपोर्ट कर सकते हैं तो इन बातों को क्यों नहीं करेंगे? इतना सवाल तो बनता ही है। कम से कम इस सवाल से लोगों को ये कहने का मौका तो मिलेगा कि वे सपोर्ट नहीं करते हैं। इन हंसते खेलते लड़कों की तरह आप अपने बेटों को बनाना चाहते हैं, आपको शुभकामनाएं, या अमेरिका भेजना चाहते हैं, आपकी समझदारी का कायल हूं, उन्हें हायर डिग्री के लिए भेज दीजिए। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक और वीडियो जारी किया तो उसमें महंत की जीप पर कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, जीप के अगल बगल में भी। साथ है महंत को भी पुलिस सुरक्षा मिली है। बजरंग मुनि दास अपनी सफाई क्या दे रहे हैं कि 80% और 20% की बात कर रहे हैं, ठीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली बात। ऐसा लग रहा है कि सफाई कम दे रहे हैं, अपनी बात को सही साबित कर रहे हैं, दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी की तैयारी का आरोप लगा रहे हैं। फिर प्रशासन वहां क्या कर रहा था? अगर ये तैयारी होने वाली थी या हो रही थी तो क्या ये काम महंत का था या प्रशासन का था? महंत को क्यों बलात्कार की धमकी देनी पड़ी? महंत कहते हैं उन पर 9 बार हमले हुए, लेकिन क्या प्रशासन ने उन हमलावरों को कभी गिरफ्तार नहीं किया? तो महंत बहु बेटियों के बलात्कार की धमकी क्यों दे रहे हैं?
देखिए, खैराबाद है, यहाँ 80% मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं। तो 20% हिंदू किस प्रकार रह सकता है, इसको बताने की आपको आवश्यकता नहीं। आप कश्मीर जैसी स्थिति, मेवात जैसी स्थिति पहले भी देख चुके हैं। हमारे यहाँ 2 संतों की पूर्व में हत्या हो चुकी है। इन्हीं लोगों के द्वारा मेरे ऊपर 9 बार जानलेवा हमला हो चुका है और आज भी मैं अपाहिज अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। ये एक शीशा वाली मस्जिद है, उस दिन हमारी कलश यात्रा निकल रही थी। ये लोग पत्थर लेके और डंडे लेके अपने छतों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे थे और करौली जैसी घटना के लिए जो है प्रयासरत थे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने शासन और प्रशासन का कि उनकी सजगता के कारण ऐसी घटना नहीं घटित हो सकी। ऐसी घटना जब प्रशासन और के सजगता के कारण नहीं हो पाई तो गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिए। तो हम लोग यही बोले कि देखिए, आप ऐसा करेंगे तो कोई अब सहन शक्ति किसी के पास रह नहीं जाएगी। अगर आप हमारी बहु बेटियों के साथ अत्याचार करेंगे तो आपके बहु बेटियों भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। दूसरी चीज, जब आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी असलियत पता चलेगी, क्योंकि ये तोड़ मड़ो के छोटी मोटी वीडियो प्रस्तुत की जा रही है जिससे मुझे बदनाम करने के लिए या मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब इसका पूरा वीडियो देखा जाए तब आपको पूरी असलियत पता चलेगी।
आखिर महंत को यह हौसला कहां से आया कि पुलिस की मौजूदगी में एक समुदाय के धर्म स्थल के सामने जाकर उसकी बहु बेटियों के बलात्कार की धमकी दे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुछ एनआरआई अंकिल जो व्हाट्सएप के वीडियो कॉल से भारत में जहर फैलाते हैं, क्या महंत के इस वीडियो को वहां के मेडिसिन स्क्वायर में चलाना चाहेंगे, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाना चाहेंगे? क्या धर्म के नाम पर बलात्कार की मान्यता हासिल की जा रही है? महंत के साथ खड़े छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा जब ये बलात्कारी बनकर घूमेंगे? तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के रहते समाज में किसी की भी बहु बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? क्या आप ऐसे किसी महंत के पास जाना चाहेंगे जो आपके बच्चों को बलात्कारी होने के लिए उकसाता हो? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल एक ऐसे ही बीमार युवक ने महान खिलाड़ी विराट कोहली की छोटी सी बच्ची के बलात्कार की धमकी दे दी। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नौकरी नहीं थी। लोग काफी नाराज हो गए, आउटरेज हो जाता है। लोगों के इस आउटरेज के दबाव में उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लोग इस महंत से भी नाराज हैं? आउटरेज निकल रहा है, क्या यह महंत भी गिरफ्तार होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।
हाँ, ये सीतापुर के महंत हैं और ये महंत कहलाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। महिलाएं चाहे किसी भी रिलीजन की हों, हम कहते हैं कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। और पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ 1-2 साल से ये देखा गया है कि दोनों कम्युनिटीज, मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुओं को रेप करने की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम्स को, और आखिरकार महिलाएं हैं जो दोनों तरफ से टारगेट होती हैं। उनको ये गलत बात कहते हुए न किसी कोई रोक नहीं रहा। मुझे लगता है हमारी सेंसिटिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो रही है और हमें ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पल की तरह उनको पनिश करना चाहिए ताकि ये घटनाएं कम हो।
क्या महंत बजरंग मुनि पर पहले भी केस दर्ज हुए हैं और उन मामलों में क्या प्रगति हुई है? महंत बजरंग मुनि को लेकर हमें सितंबर और अक्टूबर 2020 की दो खबरें मिली हैं। एक खबर 12 सितंबर 2020 की है जो दैनिक जागरण में छपी है। इस खबर में बताया गया है कि बीजेपी के नेता साकेत मिश्र ने बड़ी संगत के प्रबंधक बजरंग मुनि के खिलाफ जमीन पर कब्जे को लेकर मोर्चा खोल दिया है और बड़ी संख्या में लोगों के साथ थाने का घेराव करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग मुनि स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जे करने के लिए धमकी दे रहे हैं, गार्डों को भेजकर जमीन खाली करने को भयभीत किया जा रहा है। कमाल सराय निवासी पुत्तीलाल शुक्ल ने बजरंग मुनि के खिलाफ थाने में एक तहरीर भी दी है जिसमें कहा गया है कि उनके घर व बाग को जबरन नाम करने के लिए मुनि दबाव बना रहे हैं, जबकि वह अपने घर में 1940 से रह रहे हैं। एसडीएम अमित भट्ट ने भी मौके पर पहुंचकर साकेत मिश्र से वार्ता की, जागरण में यह सब लिखा है। इसके बाद दूसरी खबर 15 अक्टूबर 2020 की है जो अमर उजाला में छपी है कि शहर के रोटी गोदाम स्थित भाजपा नेता साकेत मिश्र के आवास पर कुछ लोगों ने लोहे के टुकड़े से हमला कर दिया। घटना से भाजपा का परिवार सहमा हुआ है, उनके नेता का इस मामले में केस दर्ज हुआ है। महंत को लेकर हमें कुछ और भी वीडियो देखने को मिले जो स्थानीय चैनलों ने चलाए हैं, जिसमें वे कभी हिंसा को उकसा रहे हैं तो कभी गालियां दे रहे हैं। हर दिन एक धर्म विशेष के खिलाफ तरह तरह के ऐसे वीडियो आ रहे हैं। हम कितना दिखाएं और आप भी कितना देखेंगे। कहीं झंडा लेकर किसी मस्जिद के बाहर हर दिन तमाशा हो रहा है, उकसाने की कोशिशें हो रही हैं। कहीं शपथ दिलाई जा रही है कि एक धर्म विशेष की दुकानों से सामान नहीं खरीदना है, कई लोग शपथ भी ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर कानून कार्रवाई नहीं करता है और करे भी तो ऐसी घटनाओं पर कोई असर नहीं होता। यह सब इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। आपको भी पता है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में कौन कौन लोग ऐसे मैसेज और वीडियो शेयर करते हैं और खुद तो अच्छी कारों में दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गांव कस्बों के नौजवानों को इन जहरीली वीडियो के संगत में छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए पैदल हो जाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के वीडियो ललकारने वाले कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए? इनमें लगने वाले नारों से एक समुदाय विशेष पर किस तरह का असर पड़ता होगा, इतना तो सोचिए।
मैंने अपने 50 साल के पत्रकारिता के कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दंगे देखे हैं, भागलपुर से लेके मेरठ मलियाना हाशिमपुरा से लेके मुजफ्फरनगर तक, बॉम्बे और गुजरात के दंगे देखे हैं, बहुत तकलीफ के हालात देखे हैं। लेकिन आज मुझे जितनी तकलीफ है और जितनी मायूसी है शायद कभी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि पहले दंगा होता था एक इलाके में, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, मीडिया उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं वो खड़े हो जाते थे, पॉलिटिकल पार्टीज आवाज उठाती थी, जुडिशरी मैदान में आती थी। लेकिन आज जो सन्नाटा है, जो खामोशी है, वो ज्यादा तकलीफ दे रही है। वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा हिंदुस्तान या तो डरा हुआ है या फिर वो समर्थन करता है इन लोगों का जो कहते हैं कि लड़कियों को घरों से निकाल निकाल के रेप कर दो, उन्हें मर्डर कर दो, जो निहायत जहरीली बातें दिन रात करते हैं। और आपका कोई दिन नहीं जाता, रोज सुबह उठ के आपको यही नजर आता है कि एक दिन हलाल है तो एक दिन लव जिहाद है तो एक दिन झटका है तो एक दिन हिजाब है तो एक दिन कुछ और इशू उठा लिया जाता है। कोई आपको चैन से आप नहीं रह सकते।
अगर आप ये समझते हैं कि यह कुछ लोगों का काम है तो आप गलत हैं। दरअसल इस तरह की हरकत करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक कुछ लोग होते हैं और बाकी चुप लोग होते हैं। कुछ लोग हरकतें करते हैं और चुप लोग समर्थन करते हैं। तो कुछ लोग और चुप लोग को मिलाकर देखिए तो समाज का एक बड़ा तबका इस काम में उद्योग की तरह लगा है, अपने ही बच्चों में दंगाई मानसिकता भर रहा है। इसकी आड़ में हर दिन नागरिकों के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। मुझे पता है कि कल से आप इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं। मुझे यही पता नहीं कि आप हैरान क्यों हैं। हैरानी की आपाधापी में सबने लिखा है कि अर्धनग्न अवस्था में खड़े सभी 7 पत्रकार हैं और ये लोकतंत्र का चेहरा है। लोकतंत्र का चेहरा तो है, लेकिन इसमें एक ही पत्रकार है जिसका नाम कनिष्क तिवारी है। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सोनी, रंगकर्मी शिवनारायण कुंदेर, सुनील चौधरी राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के और चित्रकार उज्जवल कुंदेर, इन सभी को इस अवस्था में देखकर आप उस महंत को याद कर रहे हैं जिसने एक समुदाय की बहु बेटियों का बलात्कार करने का ऐलान किया है, या इन लोगों को याद कर रहे हैं जिनके कपड़े पुलिस ने उतार दिए। मुझे निराश मत कीजिए, कहिए कि इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, ये तो पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी के थाने में बैठे थानेदार के मन में यह ख्याल कहां से आया? मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर यह तस्वीर थोड़ी देर और रहे ताकि एनआरआई अंकिल भी देख सकें। पत्रकार कनिष्क तिवारी को सुनिए।
जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। लगभग 18 घंटा हम लोग हवालात में थे। हवालात में जब थे तो हमारी फोटो अभिषेक सिंह परिहार अमिलिया थाना प्रभारी के द्वारा फोटो खींची गई थी और फिर हम लोगों को चड्डी पहनाकर जो है थाना प्रभारी के कक्ष में ले जाया गया था। वहां भी अभिषेक सिंह परिहार के द्वारा फोटो खींची गई थी जो अमलिया थाना प्रभारी है।
पत्रकार कनिष्क तिवारी ने फेसबुक पर लिखा है कि जब उनकी 10 साल की बेटी ने अखबार खोला और पापा की अर्धनग्न तस्वीर देखी तो पूछने लगी। कनिष्क तिवारी रोने लगे। इस तस्वीर और इस घटना ने उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति पर भी हमला किया है। मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। अगर आपको ये सभी नंगे लग रहे हैं तो इंस्पेक्टर का बयान सुनाना चाहता हूं। उनका कहना है कि पकड़े हुए लोग पूरे नग्न नहीं थे, हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको हवालात में अंडरवेयर में रखते हैं जिससे कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से खुद को फांसी न लगा ले, सुरक्षा की वजह से हम उनको ऐसे रखते हैं। मनोज सोनी की इस बात ने क्राइम की सारी थ्योरी पलट दी है। अब आप महंगाई की तरह इस बात का सपोर्ट तो कर ही दीजिए, सुरक्षा का एंगल आ गया है। पहले लगा कि इंस्पेक्टर सोनी ही ऐसी बात कर रहे हैं लेकिन एडीजी वेंकटेश राव भी वही बात कर रहे हैं।
नहीं, जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही, ऐसा न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर में हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है।
इससे प्रोसीजर ये है कि लॉकअप में भेजने से पहले हम उसमें पहले से है कि इसमें हम लोग पैंट शर्ट निकाल के बेचते हैं, पूरी शर्ट ये हमारा प्रोसीजर है ताकि कोई
ऐसे। पत्रकार के कपड़े उतरवा लिए गए, नागरिकों के कपड़े उतरवा लिए गए, क्या सुरक्षा कारणों से इस तरह के कपड़े उतरवाए जाते रहेंगे? अब इस मामले की जांच हो रही है, थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। एक वीडियो और है कपड़े उतारने से पहले का, जब रंगकर्मी और उनके साथी प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस सुरक्षा कारणों से उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है वो भी देखिए। मामला यह था कि सीधी जिले के रंगकर्मी नीरज कुंदेर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि नीरज ने फेक आईडी बनाकर बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके बेटे गुरुदत्त के बारे में अभद्र टिप्पणियां की थी। नीरज कुंदेर इंद्रावती नाट्य संस्थान के निदेशक है। 2 अप्रैल को जब रंगकर्मियों ने जिला कोतवाली के सामने प्रदर्शन किया तब पुलिसकर्मी उन्हें पीटने लगे। 10-15 रंगकर्मी गिरफ्तार किए गए थे। नीरज कुंदेर की बात सुनिए।
ये सब चीज चल ही रहा था कि कुछ देर बाद कहीं से फोन आता है और बोला जाता है कि इन सब लोगों को मार के यहां से भगाओ या अंदर बंद करो, एक्स वाई जेड जो भी। और पुलिस वालों ने मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। वहां से जो आंदोलन कर रहे थे साथी लोग समर्थन में मेरे, सब भागे इधर उधर, कुछ लोग वहां पर खड़े रहे और हमारे जो भी साथी गण थे उनको घसीट के वहां से थाने के अंदर ले जाया गया और वहां उन सबके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसमें मनोज वर्मा कोई एक व्यक्ति है पुलिस में, वो स्पेशली और भी कुछ लोग थे, उन्होंने खूब मारा मेरे भाई को। मेरे भाई कान का पर्दा फट गया, लगभग 70% के आसपास कहा जा रहा है कि डैमेज है। वो कोई 3 हड्डियां होती हैं जिससे सुनाई देती हैं या नसें होती हैं, वो डैमेज हो गई हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई को मारा, फिर उसके बाद कनिष्क तिवारी जो हमारे मित्र हैं उनको अलग कमरे में ले जाके बेरहमी से मारपीट की उनके साथ। और सुनील चौधरी जो दलित अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और उस आंदोलन में साथ में थे, तो सुनील चौधरी को भी बेरहमी से अलग से मारा। 3 लोगों के साथ अलग से मारपीट की और सब लोगों के साथ तो शुरू में की ही थी। उसके बाद सब लोगों को नंगा करके परेड लगाई गई, पूरे थाने में सब लोग घूमे और उसके बाद टीआई साहब के कमरे में बुलाया गया और उनकी तस्वीर खींची गई और भेजा गया कहीं पर, जिसके कारण वो सारी फोटोज वायरल हुई।
कमाल है कि पुलिस कपड़े उतारने का बचाव कर रही है। यह तस्वीर भी 2 अप्रैल की है, इसमें पत्रकार कनिष्क तिवारी भी हैं, बाकी 8 और लोग हैं। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 1894 के प्रिजन एक्ट के तहत कैदियों को अधिकार है कि अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो राज्य की जवाबदेही बनती है कि उसे कपड़ा दे, उतारने की बात नहीं लिखी है। संयुक्त राष्ट्र का भी नियम है कि कैदियों को कम से कम कपड़े तो दिए ही जाएंगे। शायद आज के दौर में तन पर अंडरवियर ही बच जाए, यही बहुत है। वैसे पुलिस के अफसर पर कार्रवाई इसलिए हुई कि तस्वीर वायरल हुई थी, ना कि कपड़े उतारे गए।
पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं और जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और उसका जो ऑर्डर आया है उसमें लिखा गया है कि तस्वीर वायरल कैसे हुई और इसकी जांच के मद्देनजर या उसके हिसाब से इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। यानी साफ तौर पर अगर लॉकअप के अंदर किसी को मारा पीटा जाता है, गालियां दी जाती है, कपड़े उतार दिए जाते हैं तो ये उतना गंभीर अपराध नहीं है जितना कि उन लोगों की ऐसा करते हुए तस्वीरें वायरल कैसे हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। पूरी जो पुलिस प्रणाली है और पूरी जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, इन लोगों ने क्या किया था? सरकार विरोधी नारे ही लगाए थे, तो क्या लोकतंत्र में किसी को सरकार विरोधी नारे लगाने का हक नहीं है? अब पूरे मामले की जांच पुलिस जरूर करेगी, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है ऐसा लगता नहीं है कि इन लोगों को न्याय मिल पाएगा जिसकी मांग वो उठा रहे हैं। हालांकि कुछ उम्मीदें बंधी हैं क्योंकि देश भर से जो पत्रकार हैं, जो रंगकर्मी हैं, इनके लिए आवाजें उठी हैं। जबकि ये पूरा वाकया रविवार से ही चल रहा है, जब नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनके भाई के साथ मारपीट हुई है, उनके कान का पर्दा फट गया है, इतनी बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया है।
खबर लिखना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। जिन्हें कानून की धज्जियां उड़ानी हैं उन्हें खूब छूट है, और पत्रकारों को कानून के नाम पर हर दिन एक नए घेरे में बंद किया जा रहा है। बलिया में नकल की खबर छापने के मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों की रिहाई को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। अमर उजाला के पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत कुमार ओझा, राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार मनोज गुप्ता गिरफ्तार हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू और बलिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने आज प्रदर्शन में हिस्सा लिया, लेकिन बलिया के पत्रकार अपने स्तर पर हर दिन शहर में मार्च निकालते हैं, धरना देते हैं, सुनवाई नहीं होती है। इस वीडियो रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और हां, चुप रहना याद रखिएगा।
के साथ छेड़छाड़ किया और हमने वो सच छापा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन अपनी चिर निद्रा से जागेगा। आपको नुकसान कर हैरानी होगी कि बलिया के मीडिया के प्रयासों की वजह से जो जागरूकता फैली उसकी वजह से बलिया आज काफी ऊंचे स्थान पर है क्षेत्र के मामले में है। और
भारतीय रिजर्व बैंक ने जीडीपी की दर का अनुमान घटा दिया है। इस साल आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहेगी तो भारत की जीडीपी 8 से 8.5% रह सकती है, लेकिन अब 100 डॉलर के आसपास रहने से जीडीपी की दर का अनुमान घटाकर 7.2 कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। पहले अनुमान था कि महंगाई की दर 4.5% रहेगी, लेकिन अब 5.7% रहने का अनुमान है। इसलिए संभाल कर खर्चे कीजिएगा, दवाओं के भी दाम बढ़ने लगे हैं।
ये डाइजीन है और ये क्रिमाफेन है, ये दोनों ही एसिडिटी कंट्रोल के लिए या पेट की गर्मी को शांत करने के लिए दवाइयां यूज होती हैं। आप इस पर खास तौर पर देख सकते हैं कि 131 इस समय इसका रेट लिखा हुआ है, जिसका रफली 110 के आसपास रेट था पिछले साल तक। और इसको अगर आप देख रहे हैं तो इस पर लिखा हुआ है 232 रुपया, और 232 रुपया जो 2020 के एंड तक अगर देखा जाए तो ये लगभग 190 रुपए के आसपास था, यानी 42 रुपए का डिफरेंस।
ये तो एक वानगी भर है। जब से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NPPA ने 10% तक रेट बढ़ाने के लिए हरी झंडी दी है, तब से आवश्यक दवाओं की सूची में लगभग 800 दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से 10% से लेकर 12% तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ दवाओं के दाम तो 20% तक बढ़ गए हैं। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़े लोग बताते हैं कि चीन में कच्चे माल की कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल ढुलाई महंगे होने से दवाओं के दामों में तेजी आई है।
अब इंसुलिन मेरे हाथ में है, ये इंसुलिन जो है वो पिछले महीने तक 1550 रुपए की आती थी और अब ये 1754 रुपए 50 पैसे की हो गई है। इसी तरीके से कोविड के समय जो ये दवाई है जो कि एजिथ्रोमाइसिन है, ये 115 रुपए की आती थी और अभी 120 रुपए की हो गई है। सरकार की तरफ से एक जो है वो कैप भी लगाया गया है कि अगर कोई इस तरीके का ड्रग्स है तो वो इतने रुपए का ही बिक सकता है।
लेकिन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आती है DPCO में कि इस मेडिसिन का रेट इतने MG का नहीं बढ़ेगा। जैसे मेन मैं आपको दवाइयां बताऊं, कालपोल हो गई, क्रोसिन हो गई, ये मैक्सिमम 500 MG में आती है। तो गवर्नमेंट ने जो DPCO का रूल लाया, इन केवल 500 MG पे लेके आया पर MG लेके नहीं आई।
अच्छा,
तो उससे क्या करा कंपनी ने, उसको बदल करके 650 MG में लॉन्च कर दिया।
अच्छा, 650 में लॉन्च करके और उस नेट से निकल गए,
उस नेट से वो निकल गए, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए।
अच्छा,
तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो आम आदमी के फायदे के लिए आए।
अच्छा, अकॉर्डिंग ये जैसे ये ऑइंटमेंट है
पॉवर्टी नाइडिन,
हाँ
पॉवर्टी नाइडिन पहले 5% में आती थी मैक्सिमम कंपनियों की, गवर्नमेंट इसे DPCO में लेके आई कि आप 5% पॉवर्टी ऑइंटमेंट का रेट, ये मिनिमम आप इतना इससे आगे सेल नहीं कर सकते। पर गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक तरफ रखते हुए कंपनियों ने उसको 10% पॉवर्टी ऑइंटमेंट में लॉन्च कर दिया।
अच्छा, 5% की बजाय
10% कर दिया। अच्छा, और उसके रेट फिर बढ़ा दिए।
सरकार के लिए एक अच्छी खबर है कि 2021-22 के लिए टारगेट था 22.17 लाख करोड़ टैक्स की वसूली का, लेकिन टारगेट से ज्यादा 5 लाख करोड़ ज्यादा टैक्स की वसूली हो गई है। तो क्या सरकार अन्य सरकारों की तरह अपने नागरिकों के खाते में कुछ पैसे देगी जिससे उन्हें इस महंगाई से राहत मिले? CNG महंगी हो गई है, इस कारण टैक्सी चलाने वालों पर बहुत भार पड़ रहा है। इन्हें सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है, ना टैक्स में ना दाम में। टैक्सी चलाकर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में तेल के दाम बढ़े तो लोगों को समर्थन राशि मिली है, भारत में अनाज के अलावा कुछ नहीं मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओला और उबेर चलाने वालों ने आज प्रदर्शन किया।
कुछ कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, लेकिन समझ लो भाई साहब बच्ची नहीं रहा कुछ, बच्चों के मुंह से निकाला छीन रहे हैं, क्या नाम है नेता, क्या बचाएंगे हम लोग?
हमारी मांगे
पूरी करो,
हमारी मांगे
पूरी करो।
जब सो करके उठो, जब लाइन में जाओ CNG के लाइन में, तो पता लगता है कि 2 रुपया 2.5 रुपया बढ़ गई।
जो सरकार निकम्मी है,
वो सरकार निकम्मी है।
सरकार से एक विनती है, आज CNG 70 रुपए है, CNG 100 रुपए लीटर कर दे किलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किराया बढ़ा दे।
महंगाई के खिलाफ ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन, इसमें ट्रांसपोर्टर से लेकर काली पीली टैक्सी वाले भी हैं और ओला उबर में गाड़ी चला रहे ड्राइवर भी। वो चाहते हैं कि या तो सरकार पेट्रोल डीजल CNG के दाम घटाए या फिर उन्हें सब्सिडी दे।
भारत सरकार और दिल्ली सरकार ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए जानबूझ के CNG के रेट, डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे, तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार।
आपकी मांग क्या क्या है?
हमारी मांग ये है कि पेट्रोल डीजल और CNG के दाम कम करे जाएं और इसको GST के दायरे में लाया जाए।
विरोध दिल्ली सरकार से भी है और नाराजगी केंद्र की सरकार से भी। आरोप ओला उबर की मनमानी का भी और सरकार से उनके किराए के निर्धारण का भी।
CNG के रेट बढ़ा दिए गए, ओला उबर का किराया भी बढ़ाओ भैया। आपने खाने वाले तेल, सरसों के, रिफाइंड के तेल बढ़ा डबल कर दिए, हमारा किराया वही 6 का 6। CNG 70 रुपए लीटर कर दी, किलो कर दी, पेट्रोल 100 पर कर दिया, हमारी गाड़ी तो इनसे चलती है।
CNG हमारी किस्त, हमारी पेट्रोल, हमारा टायर, हमारे गाड़ी, हमारी ड्राइवर, हमारा, और किराया 6 रुपए किलोमीटर। AC में कॉस्ट पड़ती है 9.5 रुपए किलोमीटर की, प्रति किलोमीटर पे 3.5 रुपए किलोमीटर का घाटा हो रहा है हमें।
CNG की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन फिलहाल रुकने वाला नहीं। 11 अप्रैल यानी सोमवार को दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ समेत कई यूनियनें दिल्ली सचिवालय के पास सांकेतिक धरना करेंगी। चेतावनी 18 और 19 अप्रैल को दो दिन की हड़ताल पर जाने की है। दिल्ली में साल भर में सीएनजी की कीमत में 25.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस साल 17 बार सीएनजी की कीमत बढ़ी है। पिछले साल 1 अप्रैल को कीमत 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अब दिल्ली में यह बढ़कर 69.11 रुपए जा पहुंची है। एक बेहतर कल और मुश्किल में आज को लेकर यह आवाज है, आमद कम और कीमत आसमान पर। समस्या की सुनवाई को लेकर आज वो तबका सड़क पर है जो रोज कमाता है तभी रोज खाता है। तो आज कमाई की कुर्बानी है क्योंकि अपनी बात सत्ता तक जो पहुंचानी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
जब भी चुनाव आता है पत्रकार से लेकर तमाम जानकार ओला उबेर के ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि जनता का नब्ज बताइए। कई लोग अपने लेख की शुरुआत ही इन पंक्तियों से करते हैं कि एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर जाते वक्त ड्राइवर ने क्या कहा। अब कम से कम इन चालकों से देश की आर्थिक हालत के बारे में भी पूछ लीजिए, भले ये देश का ना बता पाए अपनी अर्थव्यवस्था की हालत तो बता ही देंगे। और ब्रेक ले लीजिए।
कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये डोज निजी अस्पतालों में पैसे देकर लगवानी होगी, यानी बूस्टर डोज बाकी दोनों डोज की तरह मुफ्त उपलब्ध नहीं होगी। कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए जबकि कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपए देने होंगे। 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। बूस्टर डोज दूसरी डोज के 9 महीने बाद ले सकते हैं और इसके लिए प्राइवेट अस्पताल जाना होगा। वहीं हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर वालों को फ्री बूस्टर डोज जारी रहेगी। 15 साल के ऊपर 96% लोग पहली डोज ले चुके हैं जबकि 83% लोगों ने दोनों डोज ले लिया है। बूस्टर डोज की बात की जाए तो कई देशों ने बूस्टर डोज के बाद ही वीजा देने का नियम बनाया हुआ है। उन्होंने नियम ये बनाया हुआ है कि टीके की दूसरी डोज लिए हुए अगर 270 दिन हो गए हैं तो बूस्टर डोज के बाद ही एंट्री मिलेगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की अब सीबीआई जांच होगी। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब संघ और बड़े औद्योगिक घराने की फाइलें क्लियर करने के बदले 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। हालांकि उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था और डील को रद्द कर दिया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि सत्यपाल मलिक की भूमिका की भी जांच हो सकती है। एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जब कीचड़ में पत्थर मारा जाता है तो कीचड़ दूसरों पर भी उछलता है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैं 5 कुर्ते पैजामे के साथ कश्मीर गया था और वैसे ही वापस हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। सत्यपाल मलिक का कहना है कि मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को बताया था कि 300 करोड़ की रिश्वतखोरी हुई है और मैंने दोनों डील रद्द कर दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को घेरने की कोशिश भी की। उन्होंने शरद पवार के घर की दिशा में चप्पल भी फेंके। सरकार से अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 महीने से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। उनकी मांग है कि उनके विभाग को राज्य सरकार के अंतर्गत लाया जाए और उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस मामले में गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक काम पर हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले पर शरद पवार ने कहा है कि वो कर्मचारियों के साथ हैं लेकिन गलत नेतृत्व के साथ नहीं। शरद पवार ने कहा है कि वो 40 से 50 साल से कर्मचारियों के सम्मेलन में जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन में आर पार की भूमिका सही नहीं होती। शरद पवार ने कहा है कि नेतृत्व अगर गलत हो तो उसका परिणाम क्या होता है ये आज दिखा। वहीं हंगामे करने के मामले में पुलिस ने कर्मचारियों के वकील गुणरतन सदावर्ते को हिरासत में लिया है। एमएनएसटी इंडिया इंटरनेशनल के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को विशेष सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। एक दिन बाद ही सीएमएम के फैसले पर रोक लगा दी गई है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने पटेल की विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी है। विशेष सीबीआई जज संतोष स्नेही मान ने आकार पटेल को झटका देते हुए सीबीआई को राहत दी है, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन शर्मा के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जिसमें पटेल के खिलाफ जारी सीबीआई का लुकआउट नोटिस वापस लेते हुए सीबीआई डायरेक्टर को पटेल से लिखित माफी मांगने को कहा गया था। विशेष सीबीआई कोर्ट ने पटेल के लिए कोर्ट की इजाजत के बगैर भारत की सीमा से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। अगले हफ्ते मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। शुक्रवार को राउज एवेन्यू स्थित विशेष जज के इजलास में हुई सुनवाई के दौरान आकार के वकील ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी करने को लेकर जांच एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके खिलाफ चार्जशीट भी बिना मंजूरी के ही दाखिल की गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पटेल के खिलाफ एफआईआर यानी विदेश आर्थिक योगदान नियमन अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। हालांकि सीबीआई का कहना था कि वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती, वो तो बस सिर्फ उन्हें देश से बाहर जाने से रोकना चाहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 से 2023 के लिए महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया है। खुदरा महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान है। पिछले साल महंगाई दर का अनुमान 4.5% था। खुदरा महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते महंगाई की मार गहरा सकती है। पिछले सिर्फ 17 दिनों में पेट्रोल डीजल 10 रुपए महंगा हो चुका है। सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि टैक्सी ऑटो वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। ईंधन के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हुआ है। रिजर्व बैंक ने महंगाई का अनुमान तो बढ़ाया है, वहीं साथ ही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7.2% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के संरक्षण के लिए रिजर्व बैंक सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेगा।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।